नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं कनकलता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ाने के लिए एआई, ब्लॉकचेन और डेटा एनालिटिक्स के उपयोग का आग्रह किया है। प्रधानमंत्री ने बजट उपरांत वेबिनार में और सुधारों तथा व्यापार सुगमता के लिए नीतियों के प्रभावी कार्यान्वयन पर जोर दिया। दिल्ली की एक अदालत ने पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को आबकारी नीति मामले में बरी कर दिया है। सीबीआई का उच्च न्यायालय में अपील का फैसला। तमिलनाडु के पूर्व मुख्यमंत्री और ऑल इंडिया अन्ना डीएमके समन्वयक ओ पन्नीरसेल्वम डीएमके में शामिल हो गए हैं। पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के विरुद्ध खुले युद्ध की घोषणा की है। ऑपरेशन गजब लिल हक के तहत काबुल सहित अन्य प्रांतों पर हवाई हमले शुरू किए। आईसीसी टी20 क्रिकेट विश्व कप में आज शाम कोलंबो में सुपर 8 के मुकाबले में इंग्लैंड का सामना न्यूजीलैंड से होगा। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सरकार द्वारा प्रक्रियाओं को सरल बनाने, सुगम व्यापार और प्रौद्योगिकी आधारित सुशासन के विस्तार के साथ देश रिफॉर्म एक्सप्रेस पर सवार है। आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से विकसित भारत के लिए प्रौद्योगिकी सुधार और वित्त विषय पर आयोजित बजट उपरांत वेबिनार को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने ये बात कही।
राष्ट्रीय बजट पॉलिसी रोडमैप होता है, इसलिए बजट की प्रभावशीलता का आकलन भी ठोस पैरामीटर्स पर किया जाना चाहिए। ऐसी नीतियां जो इंफ्रास्ट्रक्चर का विस्तार करें, जो क्रेडिट के प्रवाह को आसान बनाएं, जो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस बढ़ाएं, जो गवर्नेंस में ट्रांसपेरेंसी बढ़ाएं, जो जनता का जीवन आसान बनाएं।
प्रधानमंत्री ने कहा कि सुधार की गति को बनाए रखने के लिए नीतिगत इरादों तक ही सीमित न रहकर उत्कृष्ट क्रियान्वयन पर भी ध्यान देना आवश्यक है। उन्होंने एआई, ब्लॉकचेन और डेटा एनालिटिक्स के व्यापक उपयोग के माध्यम से पारदर्शिता, गति और जवाबदेही बढ़ाने पर जोर दिया। प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछले एक दशक में सरकार ने अवसंरचना पर विशेष ध्यान दिया है। उन्होंने कहा कि सरकार ने यह निर्णय सोच समझकर लिया है कि भारत का विकास राजमार्गों, रेलवे, बंदरगाहों, डिजिटल नेटवर्क और विद्युत प्रणालियों जैसी ठोस संपत्तियों को तैयार करके ही संभव होगा। उन्होंने कहा कि यही कारण है कि सार्वजनिक पूंजीगत व्यय में लगातार वृद्धि की जा रही है।
11 साल पहले पब्लिक कैपेक्स के लिए बजट में लगभग 2,00,000 करोड़ रुपए का प्रावधान था। मौजूदा बजट में ये बढ़कर लगभग 12,00,000 करोड़ रुपए के पार हो गया है। इतने बड़े पैमाने पर सरकारी निवेश होना प्राइवेट सेक्टर के लिए भी एक स्पष्ट संदेश है।
श्री मोदी ने कहा कि वेबिनार को केवल विचारों के आदान प्रदान का मंच नहीं बनाना चाहिए, बल्कि इसे मंथन सत्र में बदलना चाहिए। उन्होंने कहा कि जब उद्योग, शिक्षा जगत, विश्लेषक और नीति निर्माता एक साथ मिलकर सोचते हैं तो योजनाओं का क्रियान्वयन बेहतर होता है और सटीक परिणाम मिलते हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज राजस्थान के जैसलमेर वायुसेना स्टेशन पर स्वदेशी लड़ाकू हेलीकॉप्टर प्रचंड में उड़ान भरी। उड़ान भरने से पहले राष्ट्रपति को वायुसेना के अधिकारियों ने हेलीकॉप्टर की परिचालन क्षमताओं के बारे में जानकारी दी। लड़ाकू हेलीकॉप्टर प्रचंड ऊंचाई वाले अभियानों के लिए तैयार किया गया है। राष्ट्रपति मुर्मू ने वायुसेना के वरिष्ठ अधिकारियों से बातचीत की और भारत के स्वदेशी रक्षा विनिर्माण पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत करने में शामिल वैज्ञानिकों, इंजीनियरों और कर्मियों के प्रयासों की सराहना की। हमारे संवाददाता ने बताया है कि राष्ट्रपति आज शाम भारत पाकिस्तान सीमा के निकट पोखरण फायरिंग रेंज से वायुसेना का वायुशक्ति प्रदर्शन देखेंगे।
वायुशक्ति भारतीय वायुसेना का प्रमुख युद्धाभ्यास है, जिसमें लड़ाकू विमान, हेलीकॉप्टर, परिवहन विमान और मिसाइल प्रणालियों की मारक क्षमता, सटीक निशानेबाजी और परिवहन तत्परता का प्रदर्शन किया जाएगा। इस युद्धाभ्यास के दौरान युद्ध की स्थिति में दिन के साथ साथ रात में भी वायुसेना के समन्वित ऑपरेशन का प्रदर्शन देखने को मिलेगा। इस मेगा कार्यक्रम में राफेल, सुकोई 30 एमकेआई, मिराज 2000, जगुआर और स्वदेशी तेजस सहित 77 फाइटर जेट तथा 43 हेलीकॉप्टर भाग लेंगे। जितेंद्र द्विवेदी, आकाशवाणी समाचार, जयपुर।
इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि एआई के उपयोग में विश्वसनीयता बेहद महत्वपूर्ण है। आज दोपहर नई दिल्ली में एक मीडिया समूह द्वारा आयोजित राइजिंग भारत समिट को संबोधित करते हुए श्री वैष्णव ने एआई परिवर्तन को गंभीरता से लेने की आवश्यकता पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि हर कदम सक्रिय रूप से उठाया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि सरकार प्रतिभाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करने पर विशेष ध्यान दे रही है और इस दिशा में राज्य सरकारों को भी काफी प्रयास करने होंगे। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध है। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। दिल्ली की एक अदालत ने आज दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को आबकारी नीति से जुड़े भ्रष्टाचार मामले में बरी कर दिया। अदालत ने केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई के आरोप पत्र पर संज्ञान लेने से इनकार कर दिया। विशेष न्यायाधीश जितेंद्र सिंह ने कहा कि आरोप पत्र में कई खामियां हैं। अदालत ने इस मामले में 21 अन्य लोगों को भी बरी कर दिया। सीबीआई आम आदमी पार्टी की पूर्व सरकार की रद्द हो चुकी आबकारी नीति के निर्माण और क्रियान्वयन में कथित भ्रष्टाचार की जांच कर रही है। इस बीच आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि वे ईमानदार हैं और सच्चाई की जीत हुई है।
हमें भारतीय न्याय प्रणाली पे भरोसा है। मैं जज साहब का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने हमारे साथ न्याय किया, सत्य की जीत हुई। मैं हमेशा कहता था कि भगवान हमारे साथ है।
भाजपा प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने कहा है कि इस मामले पर सोच समझकर जवाब दिया जाएगा।
निचली अदालत ने सबूतों के अभाव में उनको बरी किया है। यह तकनीकी विषय है क्योंकि ये बात भी सही है कि सैकड़ों की संख्या में सिम कार्ड और फोन सबूत के रूप में नष्ट किए गए थे। इस विषय को लेकर जो भी होगा सीबीआई अगला स्टेप उठाएगी, वो हाई कोर्ट में जाते हैं या क्या होता है। जहां तक पार्टी का संदर्भ है, इस पूरे डिटेल के आने के बाद वह इस पर स्ट्रक्चर्ड रिप्लाई देगी।
केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो ने दिल्ली आबकारी नीति मामले में निचली अदालत के फैसले के खिलाफ तुरंत उच्च न्यायालय में अपील करने का फैसला किया है। सीबीआई सूत्रों ने बताया कि जांच के कई पहलुओं को या तो नजरअंदाज किया गया है या उन पर पर्याप्त ध्यान नहीं दिया गया है। तमिलनाडु के पूर्व मुख्यमंत्री और ऑल इंडिया अन्ना डीएमके समन्वयक ओ पन्नीरसेल्वम और उनके बेटे तथा पूर्व सांसद पी रविन्द्रनाथ आज सत्तारूढ़ डीएमके में शामिल हो गए। उनके समर्थक भी चेन्नई के अरिवलियम स्थित पार्टी मुख्यालय में डीएमके में शामिल हुए। ओ पन्नीरसेल्वम ने 2001 से 2002, 2014 से 2015 और 2016-17 में तमिलनाडु के मुख्यमंत्री का पदभार संभाला। उन्होंने एडापड़ी के पल्लीसामी के नेतृत्व वाली सरकार में 2017 से 2021 तक उप मुख्यमंत्री के रूप में भी कार्य किया। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा है कि एनसीईआरटी की पुस्तक में न्यायपालिका में भ्रष्टाचार पर अध्याय शामिल करना दुर्भाग्यपूर्ण है और सरकार इस मामले को गंभीरता से ले रही है। संवाददाताओं से बातचीत में श्री प्रधान ने कहा कि उन्होंने एनसीईआरटी को सभी पुस्तकें वापस लेने और रद्द करने का निर्देश दिया है। इस मामले पर खेद व्यक्त करते हुए श्री प्रधान ने कहा कि मंत्रालय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश का पालन करेगा।
जो घटना हुई है उसको हम गंभीरता से लेते हैं। एनसीईआरटी के ऊपर उस पर उसको और इंक्वायरी किया जाएगा। जो भी व्यक्ति से उस किताब को बनवाने में, उस छात्रों को बनवाने में संलग्न है, उनके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। आगे ये गलती ना हो, न्यायपालिका को आश्वस्त करते हैं और मैं मानता हूँ हमारी भारत जैसे बड़े प्रजातंत्र की ही सुंदरता है, न्यायपालिका की आदर्श स्थान है, न्यायपालिका की सर्वोच्च स्थान है।
इससे पहले सर्वोच्च न्यायालय ने न्यायपालिका में भ्रष्टाचार पर अध्याय वाली कक्षा 8 की एनसीईआरटी की पुस्तक पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया था। मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने कहा है कि तमिलनाडु विधानसभा चुनाव में भागीदारी बिहार विधानसभा चुनाव से भी ज्यादा होगी। चेन्नई में आज संवाददाताओं से बातचीत में मुख्य निर्वाचन आयुक्त ने कहा कि तमिलनाडु ने हर बार चुनाव में मतदान प्रतिशत के मामले में मिसाल कायम की है। उन्होंने कहा कि निर्वाचन आयोग की वेबसाइट पर ऑनलाइन नामांकन की सुविधा उपलब्ध है, लेकिन कानून के अनुसार नामांकन पत्र व्यक्तिगत रूप से भी दाखिल किया जा सकता है। मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण SIR प्रक्रिया के बारे में उन्होंने कहा कि बिहार में सफल रही है और इसका मूल संशोधन मतदाता सूची को साफ सुथरा रखने के लिए किया गया है, ताकि मृत या अन्य स्थानों पर पलायन कर चुके लोगों के नाम इसमें शामिल न हो। सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश पर पश्चिम बंगाल की अपूर्ण अंतिम मतदाता सूची कल जारी की जाएगी। इसमें उन मतदाताओं के नाम भी शामिल होंगे जिनके दस्तावेज और दी गई जानकारी का अभी SIR प्रक्रिया के तहत न्यायिक सत्यापन होना है। भारतीय जनसंचार संस्थान IIMC का 57वां दीक्षांत समारोह आज नई दिल्ली में होगा। समारोह में उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन मुख्य अतिथि होंगे। IIMC के कुलाधिपति तथा सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव समारोह की अध्यक्षता करेंगे। इस अवसर पर उपराष्ट्रपति IIMC नई दिल्ली में नए अकादमिक ब्लॉक और छात्रावास ब्लॉक की आधारशिला भी रखेंगे। सूचना और प्रसारण मंत्री इन्क्यूबेशन सेंटर में क्रिएटर्स लाउंज का उद्घाटन करेंगे। भारतीय जनता पार्टी ने कहा है कि पॉल एम मैकगार्ड की पुस्तक स्पाइंग इन साउथ एशिया, ब्रिटेन, अमेरिका और भारत का गुप्त शीत युद्ध में दावा किया गया है कि इंदिरा गांधी के कार्यकाल के दौरान लगभग हर विभाग विदेशी खुफिया एजेंसी के प्रभाव में था। आज दोपहर नई दिल्ली में संवाददाताओं को संबोधित करते हुए पार्टी प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि अब देश ये जानना चाहता है कि विदेशी एजेंसियों से कथित तौर पर धनराशि प्राप्त करने के संबंध में पुस्तक में किए गए सीधे दावों पर कांग्रेस पार्टी की ओर से कोई प्रतिक्रिया क्यों नहीं आई है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @HIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ने अफगानिस्तान के विरुद्ध एक खुले युद्ध की घोषणा की है। इस घोषणा के साथ पाकिस्तान ने आज सुबह काबुल सहित अफगानिस्तान के अन्य प्रांतों में हवाई हमले किए। तालिबान के प्रवक्ता जबीउल्लाह मुजाहिद ने कहा कि पाकिस्तानी बलों ने काबुल, कंधार और पक्तिया के कुछ हिस्सों में हवाई हमले किए। एक रिपोर्ट।
पाकिस्तान ने दावा किया है कि उसने कल रात अफगानिस्तान के खिलाफ गजब लिल हक अभियान की शुरुआत के बाद लगभग 133 अफगान तालिबानियों को मार गिराया। वहीं तालिबान के रक्षा मंत्रालय ने कल रात 19 पाकिस्तानी सैन्य चौकियों और 2 सैन्य ठिकानों पर कब्जा किए जाने तथा कुल 55 पाकिस्तानी सैनिकों को मार गिराने की बात कही है। हालांकि किसी स्वतंत्र अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी ने इन आंकड़ों को सत्यापित नहीं किया है। दोनों पक्ष एक दूसरे को भारी नुकसान पहुंचाने का दावा कर रहे हैं। संयुक्त राष्ट्र प्रमुख अंतोनियो गुतरेश ने पाकिस्तान और अफगानिस्तान से कूटनीति के जरिए समाधान तलाशने का आग्रह किया है। इससे पहले भारत ने अफगान क्षेत्र पर पाकिस्तान के हवाई हमलों की कड़ी निंदा की। इन हमलों में रमजान के पवित्र महीने में कई नागरिक हताहत हुए हैं, जिनमें महिलाएं और बच्चे भी शामिल हैं। समाचार कक्ष से मैं सरफिरोजी।
ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराग्ची ने कहा है कि परमाणु कार्यक्रम को लेकर अमेरिका के साथ ईरान की अप्रत्यक्ष वार्ता अब तक की सबसे गहन और लंबी वार्ताओं में से एक है। श्री अराग्ची ने कल ईरान के सरकारी टेलीविजन को दिए एक साक्षात्कार में ये बात कही। अमेरिका ने अभी तक वार्ता पर कोई टिप्पणी नहीं की है। ICC T20 विश्व कप में आज सुपर 8 के ग्रुप 2 के मैच में कोलंबो में इंग्लैंड का सामना न्यूजीलैंड से होगा। ये मैच शाम 7 बजे शुरू होगा। भारत सुपर 8 के आखिरी मुकाबले में रविवार को वेस्टइंडीज से खेलेगा। मैच शाम 7 बजे से कोलकाता में होना है। कल भारत ने जिम्बाब्वे को 72 रन से हरा दिया था। उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह और कृषि तथा किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने महान स्वाधीनता सेनानी चंद्रशेखर आजाद के बलिदान दिवस पर उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की है। मौसम विभाग ने अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, केरल और माहे में कल तक तेज वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। रविवार तक पश्चिम बंगाल के उप हिमालयी क्षेत्र और सिक्किम में तेज हवाएं चलने का अनुमान है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ाने के लिए AI, ब्लॉकचेन और डेटा एनालिटिक्स के उपयोग का आग्रह किया है। प्रधानमंत्री ने बजट उपरांत वेबिनार में और सुधारों तथा व्यापार सुगमता के लिए नीतियों के प्रभावी कार्यान्वयन पर जोर दिया। दिल्ली की एक अदालत ने पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को आबकारी नीति मामले में बरी कर दिया है। सीबीआई का उच्च न्यायालय में अपील का फैसला। तमिलनाडु के पूर्व मुख्यमंत्री और ऑल इंडिया अन्ना डीएमके समन्वयक ओ पन्नीरसेल्वम डीएमके में शामिल हो गए हैं। पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के विरुद्ध खुले युद्ध की घोषणा की है। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।